तो हमें नहीं इससे सबक मिलता कि हम अब कोई बात कहते हैं जबकि मेरा दिल करता है कि मैं बड़ा कुरान पढ़ूं, मेरा दिल करता है मैं बड़ी नेक हो जाऊं, मेरा दिल बस दिल ही करता रहता है, उसके बाद क्या कन्विक्शन नहीं है कि हम आगे बढ़ के वो काम करें। शैतान को देखिए कितना डेडिकेटेड था, कितना उसने मेहनत की है और कभी आराम से नहीं बैठता, तब से शुरू है कयामत तक वर्गलाता ही रहेगा लोगों, ना थकता है ना बस करता है, स्टॉप नहीं है कभी। लेकिन हमें देखें, हम थोड़े दिन में थक जाते हैं, थोड़े दिन में कुता जाते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, ये हो गया वो हो गया, नहीं ऐसे नहीं तो वो नहीं, नेकी को छोड़ने के हमारे पास हजार बहाने, वो बुराई करने में कितना डेडिकेटेड है, हम नेकी करने में नहीं उतने डेडिकेटेड। अगर कोई नेकी को अपना भी लेंगे, करना शुरू कर भी देंगे, तो उसमें भी कभी कभी एक दिन स्किप हो रहा है, कभी नागा इस चीज का, कभी उस चीज का, जरा जरा सी चीज तो हमें हिला देती है, कभी मेहमान आ गए घर में, कभी हम कहीं चले गए, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, बस इस तरह की बस एक्सक्यूजेज है हमारे पास। उसको भी तसलसल के साथ नहीं करते कि क्योंकि नेकी को भी डेडिकेटेड होकर कर ले, अव्वल तो नेकी की तरफ आना ही नहीं, बस ख्वाहिशात ही है हमारी, चाहते हैं, और चाहतों से जन्नत थोड़ी मिल जानी है, और करने का मामला आया तो फिर सुस्ती से बैठ गए, बस दिल ही चाहता रहता है हमारा, तो करना कब है। तो कम से कम ये सीखें कि देखें शैतान ने कहा और उसको करके दिखाया। हसन बसरी फरमाते हैं कि उसने इंसानों पे कोई तलवार नहीं उठाई, ना ही कोई लाठी बरसाई, उसने सिर्फ दावा किया, आरजुएं दिलाई और लोग धोखे में पड़ गए। बस दावे करता है, वादे करता है, इंसान को आरजुएं दिलाता है और इंसान धोखे में पड़ जाता है। तो देखिए वो किस तरह से बुराई को मुजय्यन करके दिखाता है, बुराई को खूबसूरत बनाता है। हम क्या नेकी को खूबसूरत नहीं बना के दिखा सकते लोगों को? वो गुनाह को खूबसूरत बना सकता है तो हम नेकी को क्यों नहीं खूबसूरत बना सकते? हम कुरान को इतना प्यारा करके क्यों नहीं लोगों के सामने पेश कर सकते कि लोग इस तरफ मायल हो जाएं, इस तरफ आ जाएं, उनका दिल करे कि मैं भी कुरान पढ़ूं, उनका दिल करे कि मैं भी ऐसी खूबसूरत किताब, ऐसे अल्लाह के कलाम को सीखूं समझूं। हम क्यों नहीं कर सकते? इसी तरह और भी नेकी के काम है, हम क्यों नहीं खूबसूरत बना के दिखा सकते लोगों को? शायद इसलिए कि हमें वो खुद भी खूबसूरत नहीं लगते, हम खुद ही उकताए हुए रहते हैं तो किसी को क्या खूबसूरत करके दिखाएंगे। और फिर हमें ये भी पता चलता है ना कि नेमत चली जाती है तो फिर उसका वापस मिलना बहुत ही मुश्किल है, और नेमत जाती नाशुक्री की वजह से है। तो हमेशा देखें अगर कोई नेमत छिन गई है तो कहीं मैंने कहीं नाशुक्री तो नहीं की, बजाय हर वक्त ये कहने के हमने ऐसा क्या कर दिया था, हमारे साथ क्यों ऐसा हो गया, हर वक्त ये कहने की बजाय कभी ये भी तो सोचना चाहिए कहीं मैंने नाशुक्री तो नहीं करती, कहीं मेरे से तो नहीं कोई गलती हो गई। या तो हम ये कहते हैं मैंने ऐसा कर क्या कर दिया, या फिर ये कहते हैं बस मेरा तो कोई इम्तिहान ही होगा, यानी मैं तो इतनी अच्छी हूं कि मेरा इम्तिहान ही होगा, जाहिर ही बात है बुरा तो मैंने कुछ किया ही नहीं कभी, मेरा कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया। हर वक्त हमने आपको बस इस बात से खुश करते रहना कि भाई हमसे तो कुछ गलत होता ही नहीं है, अल्लाह अकबर। तो बहुत सारे लेसन हैं, बहुत सारे, अगर आप इन सारी चीजों को लिखने लगे ना एक जगह पे, लिस्ट बना लें कि ये लेसन मुझे इससे मिले, और फिर इस चीज को शेयर करें आगे लोगों के साथ, कहीं आप जाएं तो बताएं कि मैंने इस तरह सबा की कहानी पढ़ी है, कौम सबा कौन थी, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उनकी जो नाशुक्री की वजह से क्या क्या हुआ, और नाशुक्री से दूसरों को भी रोके खुद भी हमने रुकना। और आगे अब नेक्स्ट जो आयात है वो फिर से तौहीद के ऊपर बात आ रही, जैसे शुरू में तौहीद की बात आई थी सूरह के शुरू में भी, तो इसी तरह यहाँ पे भी तौहीद की बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ, कह दीजिए ए नबी आप इनसे कह दी, पुकारो उन हस्तियों को जिनको तुम जिनका तुम जोम रखते हो अल्लाह के इलाह, यानी क्या जोम रखते हो कि वो इलाह है, वो माबूद है, वो इस काबिल है कि उनको खुदा बनाया जाए, वो हाजत रवा, मुश्किल कुशा, और क्या बिगड़ी बनाने वाले, वो गौस हैं, वो फरियाद रस हैं हमारे, उनको पुकारो, पुकारने से मतलब यहाँ पे क्या है, उनको पुकारो यानी उनसे उनको पुकारो कि वो तुम्हारी हाजत पूरी करें, तुम्हारी जरूरत पूरी करें। और दूसरा माना यह है कि बुलाओ उनको, जरा हाजिर करो ताकि हम उनसे जरा पूछें। तो मुशरिकीन को एक चैलेंज है कि बुलाओ उनको कि हम जरा उनसे बात करें, उनसे पूछें, जिनको तुम समझते हो कि ये अल्लाह के सिवा ये हैं जो तुम्हें कुछ देते हैं, या ये हैं जो तुम्हारे खुदा हैं, या ये हैं जो तुम्हारी बिगड़ियां बनाते हैं, तुम्हें औलाद देते हैं, तुम्हें शिफा देते हैं, तुम्हारे काम संवारते हैं, तुम्हारी दुआएं सुनते हैं। ला यमलिकून मिसकाल ज़र्रतिन फिस समावाति वला फिल अर्ध, वो नहीं मालिक जर्रे के बराबर चीज के भी आसमानों में और ना जमीन। जर्रा कितना होता है? सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है ना उसको जर्रा कहते हैं। आप बाहर जाके जरा एक मिट्टी का जर्रा उठा के अपनी हथेली पे रखें और सोचें कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि एक जर्रे के बराबर भी कोई मालिक नहीं है आसमानों में और ना जमीन। आसमानों में कौन हो सकता था? फरिश्ते हो सकते थे ना, जिनके बारे में कोई सोच सकता था कि ये भी कोई खुदा है या ये भी हमारा कुछ बना सकते हैं, जैसे मुशरिकी ने मक्का नाउजु बिल्ला अल्लाह की बेटियां बनाते थे उनको, या आज भी लोग देवी या देवता जो बनाए होते हैं वो फरिश्तों की सूरत के अंदर कहते हैं कि ये लक्ष्मी देवी है, फलानी है, या बात का कॉन्सेप्ट फरिश्तों का, ये फरिश्ते हैं जिनके हाथों के अंदर है, या मेरे गार्डियन एंजल हैं जो मुझे गार्ड करते हैं, बस वही है, उनके हाथ में ही है मेरी सारी यानी प्रोटेक्शन। तो वो एक जर्रे के भी मालिक नहीं है। यहां से नफी हो गई इस बात की कि फरिश्ते कोई काम नहीं आपका बना सकते ना बिगाड़ सकते, या जिन्नात अगर हम कहें आसमानों में जा रहे हैं या जमीन पे आ रहे हैं, वो भी नहीं किसी चीज के मालिक। और कौन रह गया? जमीन में। अब जमीन की तरफ आए, जमीन में जितने हैं जो अपने आप को कुछ भी कहें कि हम वलीउल्लाह हैं, हम आपके काम बना सकते हैं, हम गौस हैं, हम आपके काम बना सकते हैं, या हम कोई भी हैं, हम आपके काम संवार सकते हैं, या हम हैं जो कुछ आपकी बिगड़ी बना सकते हैं या आपको पार लगा सकते हैं, सबका दावा झूठा है, क्योंकि कोई भी एक जर्रे के बराबर आसमानों और जमीन में किसी चीज का मालिक नहीं है। अगर कोई कहता है कि मालिक है, वो कुरान की नफी करता है। बाद लोग कहते नहीं जी, असल इख्तियार तो अल्लाह का है, अल्लाह ने ही इनको कुछ इख्तियार दिया, तो अल्लाह ताला ने बस इनको इख्तियार दे दिया। तो ये बताएं कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये यहाँ पे तो लिखा होना चाहिए ना फिर, कि अल्लाह ताला, मगर अल्लाह ताला जिसको इख्तियार दे दे वो मालिक भी बन जाते हैं। यहाँ पे तो नहीं कहा गया कि कोई मालिक है ही नहीं, कोई भी नहीं है। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया हुआ तो बताया हमें कि वो बादलों को हांकते हैं, या जिसकी जान निकालने को अल्लाह ताला कहे उसको जान निकालते हैं, या रिस्क को तकसीम करते हैं, तो ये हमें बताया गया है ना। तो ये भी बताया जाना चाहिए था फिर कि फला फला इंसान है, उनकी भी आप करो, या अंबिया जो हैं वो भी लोगों की बिगड़ियां बना सकते हैं, वो भी लोगों के काम संवार सकते हैं, वो भी किसी को औलाद दे सकते हैं, वो भी रोजगार के मालिक हैं, वो भी उनके भी हाथ में अल्लाह ने दिया। फरिश्तों तक को ये फरमाया कि वो वही करते हैं जो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया, और इंसानों में से तो किसी का भी नहीं बताया। फिर हमने गौस बना लिए, कुतुब बना लिए, अब्दाल बना लिए, ये फलाना है, ये समुद्रों के ऊपर है, इसका इख्तियार ये फलाने का उसके ऊपर है। अल्लाह ताला ने कहा मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, चाहे फरिश्ता है, चाहे नबी है, चाहे वली है, चाहे जिन है, चाहे कोई भी चीज है, कोई बुत है या कोई देवी है या कोई भी है, उनको बुलाओ ना जरा, उनसे पूछेंगे किसके पास इख्तियार है, या तुम पुकारो उनको। तो फिर कैसे गैरुल्लाह से जाके कुछ मांगा जा सकता है? कैसे गैरुल्लाह से अपनी हाजतें पूरी करने के लिए सवाल किया जा सकता है? कैसे गैरुल्लाह के दर पे झुका जा सकता है जबकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया? वो देखिए, और बड़ी चीजें तो दूर की बात है, जर्रे के भी मालिक नहीं है तो और किसी चीज के क्या मालिक होंगे? किसी जिंदगी मौत के, किसी इंसान के रोजगार के, किसी, यही चीजें होती हैं ना जिनके पीछे लोग भागते हैं इन इन दरगाहों पे, इन दरों पे, इन इन बाबों के पास, या इनके पैर पैरों पे अपने माथे रखते हैं, वो इसी वजह से रखते हैं ना कि हमारे ये काम हो जाए। अल्लाह ताला फरमा रहा है वो किसी चीज के मालिक ही नहीं, जर्रे के भी नहीं मालिक। और फिर चलो कोई कह सकता है कि चलो मालिक ना हुए, चलो इन्होंने साथ कुछ शराकत की होगी, उसकी भी नफी कर दी। वमा लहुम फीही मा मिन शिर्क, और नहीं इनमें, इन दोनों में कोई शराकत भी, हिस्सा भी इनका। جس میں آسمانوں میں بھی نہیں اور زمین میں بھی نہیں, کوئی ان میں سے کسی کا حصہ نہیں. آسمان والوں میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ مثقال ذرہ کے برابر کوئی رکھتا ہو آسمانوں میں کسی چیز کے اوپر اختیار, یا کسی چیز کی ملکیت, یا کسی چیز میں حصہ. ولا فی الارض, اور زمین میں بھی کسی چیز کے اندر حصہ کوئی نہیں رکھتا, نہ کوئی کسی کا مالک ہے. ٹھیک ہے, من دون اللہ سے سب ہی آ گئے اس میں, آپ کسی ایک کو نہیں کہہ سکتے کہ صرف بتوں کی بات ہو رہی ہے, یہ بت نہیں ہے مالک, باقی تو سارے جو نیک لوگ ہیں وہ مالک ہوتے ہیں. نہیں, یہ کہاں سے آ گئے, من دون اللہ ہے. یہاں پہ اللہ کے علاوہ ہر ہستی جس کو بھی لوگ پوج رہے ہیں, چاہے وہ آسمانوں میں چاہے زمین میں, وہ آسمان کی کسی چیز کی بھی مالک نہیں ہے, زمین کی کسی چیز کی بھی مالک نہیں, نہ آسمانوں میں ذرے کے برابر چیز کی مالک ہے, نہ زمین میں ذرے کے برابر چیز کی مالک ہے, اور نہ ہی ان میں کوئی پارٹنرشپ ہے کہ چلو 90% اللہ کا حصہ, باقی 10% صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیا, یا 1% ان کو دے دیا, اتنا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی, وما لہم فیہ من شرک. اچھا پھر اب یہ کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ہیلپ کی ہو اللہ کی, وما لہ منہم من ظہیر, نہیں اس کے لیے ان میں سے کوئی مددگار, ان میں سے کوئی مددگار بھی نہیں اللہ کا, کہ کوئی آسمانوں کو بنانے میں یا آسمانوں کی کسی چیز کو اور بنانے میں, کسی ستارے سیارے کو, زمین کے کسی کیڑے کو بنانے میں اللہ کی مدد کی ہو, نعوذ باللہ, کوئی نہیں. تو یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں, والذین یدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, جو ان کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا, اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں, یہ تو کھجور کے چھلکے کے اندر جو اوپر جھیلی سی ہوتی ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے, گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں. یہ کہہ دیں گٹھلی کے اوپر چھوٹی سی جھیلی سی ہوتی ہے نا, اس کے بھی نہیں ہے مالک, اتنی سی چیز. یعنی یہاں پہ کہہ دیا کہ ذرے کے بھی مالک نہیں, اب ذرے سے نیچے کیا چیز ہو سکتی ہے, اتنی چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی, سب سے چھوٹی چیز کی نفی فرما دی, تو بڑی چیزوں کی تو نفی ہو ہی گئی نا, سب چیزوں کی نفی ہو گئی, اس لیے کہ جو بھی چیز ہوگی ذرے سے بڑی ہوگی, جب ذرہ ہی نہیں ان کے کنٹرول میں تو بڑی چیزیں کیا ہوں گی, اس کا مطلب سب کے سب فقیر ہیں, اس کے محتاج ہیں, اس کے در کے غلام ہیں, اس کے بندے ہیں. تو پھر کسی جگہ پہ بھی جا کے ماتھا مت ٹیکیں, کسی سے امیدیں نہ لگائیں, کسی کو نہ سمجھیں کہ یہ داتا ہے, یہ دینے والا ہے, یہ فریادیں سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا آسمانوں کے بھی کل فرشتے بھی اس کے سامنے لب نہیں ہلا سکتے سفارش کے لیے, سفارش تک نہیں کر سکتے, اس کی آگے نفی بھی آ گئی ہے. ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له, نہیں فائدہ دے گی کوئی سفارش اس کے پاس مگر اس کے لیے جس کو وہ چاہتا ہو, جس کے لیے وہ چاہتا ہو. یعنی کوئی ذرا سی یعنی شفاعت سفارش کسی کی اس کے لیے بھی اپنی زبان نہیں کھول سکتا, کسی کے کام کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, سفارش تک نہیں کر سکتا. اس لیے کہ مشرکین کا یہ بھی ایک عقیدہ تھا نا کہ جی ہم ان ہستیوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہیں, یہ تو ہمیں اللہ کے پاس سفارش کرائیں گی, جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اس کا دامن پکڑ لیں گے یہ ہمیں پار کرائیں گے, اس بہشتی دروازے سے ہم گزر جائیں تو وہ ہماری وہاں پہ بہشت ہمارے لیے جنت ہو گئی, وہاں پہ یہ ہمیں خود ہی لے کر جائیں گے, وہاں ہم نے بس ہماری آپ کے آگے آپ کی اللہ کے آگے یہ ہمارے اللہ کے آگے سفارش کرتے ہیں. سفارش تو کسی کے بھی نہیں فائدہ دیتی اللہ کے پاس, اگر تم اس وجہ سے ان کی پوجا کر رہے ہو تو ان کی کیا مجال ہے, سفارش تو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اس کو اجازت دے وہ سفارش کرے تو ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو اللہ کی مرضی ہے نا, پھر ان کی تو کوئی بھی قابلیت نہ ہوئی ہے, ان کی تو کوئی سے نہ ہوئی وہاں پہ. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فرشتوں تک کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ آسمان کے بھی کل فرشتے اس کے سامنے کسی سفارش کے لیے لب ہلا نہیں سکتے مگر جس کے لیے اللہ اپنی رضامندی سے اجازت دے دے, اللہ تعالیٰ ان کو کہے تم سفارش کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہے تو ان کو آنر دینا کہ تمہارے دیکھو تم نے سفارش کی ہے, تو ان کو عزت دینے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ آپ سفارش کریں. और अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, वला यशफाउना इल्ला लिमन इर्तदा, वो लोग सिर्फ उनकी सिफारिश कर सकते हैं जिनके लिए अल्लाह की रजा हो, और वो तो खुद उसके खौफ से थर थर कांपते हैं, खुद कांपते हैं। और देखें फरिश्तों का ये हाल, जो अल्लाह ताला के इतने मुकर्रबीन, जो पाक मखलूक है, जो कभी किसी कोई गुनाह नहीं उन्होंने किया, जो अल्लाह ताला के सबसे करीब है, वो भी थर थर कांपते हैं उसके खौफ से। तो किसी और को क्या सोच सकते हैं। और इंसानों के अंदर सबसे जो कामिल इंसान है और तमाम बनी आदम के जो सरदार हैं नबी अलैहिस्सलाम, वो भी जब कयामत के दिन मकामे महमूद में शिफात के लिए तशरीफ ले जाएंगे कि अल्लाह ताला आए और मखलूक के फैसले करें, उस वक्त की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के बारे में फरमाया कि मैं अल्लाह ताला के आगे सज्दे में गिर पड़ूंगा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है कि कब तक मैं सज्दे में पड़ा हूँ, और उस सज्दे में इस कदर अपने रब की हमद तस्बीह बयान करूंगा कि इस वक्त तो वो अल्फाज भी मुझे नहीं पता, वो अल्लाह ताला उस वक्त ही सिखाएगा। फिर अल्लाह ताला मुझसे फरमाएगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना सर उठाइए, आप बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, आप शिफात कीजिए आपकी शिफात कबूल की जाएगी, तब अल्लाह ताला इनको फरमाएगा। तो ये नहीं है कि बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते ही कोई धोंस जमा के या कोई अपनी मर्जी से जिसकी मर्जी सिफारिशें करते रहे, बल्कि एक और हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से सिफारिश करूंगा और मेरे लिए एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी कि मैं इतने आदमियों को सिर्फ जहन्नुम से निकालूं और जन्नत में दाखिल कर दूं, फिर दोबारा अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होकर सज्दे में गिर पड़ूंगा, फिर उस वक्त तक सज्दे में पड़ा रहूंगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा, फिर कहा जाएगा मोहम्मद सर उठाओ, बात कहो सुनी जाएगी, सवाल करो दिया जाएगा, सिफारिश करो कबूल की जाएगी, तो मैं अल्लाह ताला की हमदो सना करूंगा जो अल्लाह ताला मुझे उस वक्त सिखाएगा, उसके बाद मैं सिफारिश करूंगा, चुनाचे मेरे लिए फिर एक हर्द मुकर्रर कर दी जाएगी, मैं उसके मुताबिक लोगों को जहन्नुम से निकालूंगा और जन्नत में ले जाऊंगा। इस तरह 3-4 दफा होगा, रावी कहते हैं मुझे याद नहीं है 3 दफा होगा या 4 दफा होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, या अल्लाह अब तो जहन्नुम में कोई भी मुअहिद बाकी नहीं रहा, यानी तौहीद वाला बाकी नहीं, सिवाय उन लोगों को जिन्होंने जिनको कुरान ने ही रोक दिया, वो रह गए हैं सिर्फ जिनको कुरान ने रोक दिया। क्या मतलब जिनको कुरान ने रोक दिया, यानी कुरान के मुताबिक, कुरान की आयात के मुताबिक वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहने वाले सिर्फ वो रह गए, तो वो रह जाएंगे। तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत देगा, लेकिन कब किसको निकालना है ये भी अल्लाह की मर्जी से, किसके लिए आपने सिफारिश करनी है ये भी अल्लाह की मर्जी से, कौन सिफारिश करेगा, बेशक करेंगे अंबिया भी करेंगे, फरिश्ते भी करेंगे, नेक लोगों की भी सिफारिश होगी, शुहदा भी करेंगे, हुफाज भी करेंगे, किसकी करेंगे, जिसकी अल्लाह ताला चाहेगा। ऐसे नहीं कि खुद ही हर एक की जरूरत हो जाए, खड़ा होके वो कहे कि जी नहीं जी मेरा ये मेरा मुरीद था, मैंने इसको लेकर जाना है, इसको कैसे छोड़ सकते, मैंने तो तब तक जन्नत में नहीं जाना जब तक इसको ना लेके जाऊं, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस दिन तो अंबिया भी नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, कैसे कोई खड़ा होकर किसी के लिए कहेगा, कहेगा मुझे मेरी जान बख्शी जाए, अपनी जान की अमान अंबिया भी तलब करेंगे, आप और किसी की बात क्या कह सकते हैं, औलिया कराम सुलहा शुहदा सालेहीन आप इनका कैसे कह सकते हैं, हाँ जब अल्लाह ताला ही उनको फरमाएगा। हत्ता इसीलिए एक तफसीर में ये भी आता है, देखें आगे मैं आपको बताती हूँ तो आपको समझ आएगी, हत्ता इज़ा फुज़िया अन कुलूबिहिम, जा हत्ता के जब घबराहट दूर हो जाएगी, खौफ दूर हो जाएगा उनके दिलों से, क़ालू माज़ा क़ाला रब्बुकुम, वो कहेंगे क्या कहा है तुम्हारे रब ने, क्या कहा है, क़ालू अल-हक, तो वो कहेंगे हक, यानी जब ये खड़े होंगे क़यामत के दिन सब खौफज़दा होंगे, सब इंतजार कर रहे होंगे अल्लाह ताला क्या फैसला करता है, फिर अल्लाह ताला जिनको शिफात की इजाजत देगा वो शिफात करेंगे, लेकिन दिल फिर भी सहमे होंगे, डरे होंगे, ऐसे नहीं कि वो दलेरी के साथ जी मैंने इसको लेके जाना है, और मैं जैसे लोग कहते हैं कि हमारे तो वो ले जाएंगे ही नहीं जब तक कि वो अपने मुरीदों को ना साथ ले जाए, यानी वो उन्होंने बड़ी धूम जमानी है उन्होंने वहां पे, तो लोग तवक्कुआत में खड़े होंगे, थके होंगे, कान लगे होंगे अल्लाह के फैसले की तरफ, दिल सहमे होंगे, तो जब अल्लाह ताला फैसला करेगा ना, तो जो सिफारशी ने सिफारिश कर दी, अल्लाह ताला फैसला करेगा, तो शुरू में तो फैसला किसी को समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल इतने डरे होंगे, इतने सहमे होंगे, इतनी शदीद घबराहट होगी। जैसे होता है ना, जब बहुत इंसान डर जाता है, कोई बात भी कुछ करे तो समझ ही नहीं आती कि बात कही क्या है। अल्लाह रहम करे, जब अदालतों वगैरह के अंदर इसको पता हो कि भाई इसको फांसी की सजा हो सकती है, वो फैसला सुनाया जाए, तो उसको तो शुरू में उसका दिमाग ही माउफ हो चुका होता है कि भाई बात ही समझ नहीं आती, ये तो सारी जिंदगी का फैसला है। तो फिर जब वो जरा उनके दिल से खौफ जाएगा, तो एक दूसरे से कहेंगे, क्या कहा तुम्हारे रब ने, क्या फैसला हुआ है, क्या फैसला हुआ है, ये हालत होगी। आप दुनिया में भी देख लें, एक पुलिस वाला या कोई रोक ले, अभी मैं आपको एक बात क्या बताती हूँ, किसी स्टूडेंट के साथ मेरी बात हुई, तो वो मेरे साथ फेस टाइम पे थी, फर्स्ट टाइम उन्होंने बात की। मैंने उनसे पूछा, आप किस कोर्स में हैं? तो वो बेचारी इतनी घबराई हुई, इतनी घबरा गई बात करने की उससे, कि वो उन्होंने ऐसा कोर्स का नाम बताया जो कि हमारे पास था नहीं। तो मैंने कहा, अल्लाह ये कोर्स तो हमारे पास नहीं है। तो वो कहती कि असल में मैं इतनी घबरा गई आपसे बात करने में कि मुझे ये भी भूल गया कि मैं कौन से कोर्स में। देखे ना, ये तो एक इंसान से, एक मामूली से इंसान से बात करने की बात हो रही है, कहाँ अल्लाह ताला की जनाब पाक में कोई खड़ा हो और उसका सारी जिंदगी का फैसला होना हो, वो उसके खौफ का आलम क्या होगा। फिर जो वो दिल से जरा खौफ, जब अल्लाह ताला का फैसला आ जाएगा, दिल से जरा खौफ जाएगा, तो फिर कहेगा, अल्लाह ने क्या कहा, क्या फैसला हुआ है, क्या फैसला हुआ, ये तो हालत होगी वहां पे। और लोग यहाँ पे समझे बैठे हैं कि जी वहां पे तो हमारे तो काम ही बड़े आसान है, जबकि हम हालात में पढ़ते हैं हदीस में कि अल्लाह ताला उस दिन इतना गजबनाक होगा, इतना गजबनाक होगा कि किसी की जरूरत नहीं होगी। अंबिया के पास भी लोग जा रहे होंगे ना, हर एक नबी, आपने वो हदीस, लंबी हदीस है, अभी नहीं मैं आपके सामने रख सकती, लेकिन आपको ये पता है वो हदीस के, आदम अलैहिस्सलाम के पास, नूह अलैहिस्सलाम के पास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा, उलुल अज़्म पैगंबरों के पास जाएंगे, वो जुर्रत नहीं कर सकेंगे कि अल्लाह ताला के आगे जाके कोई बात कर सके, वो खौफ की हालत होगी। और हमने सोचा था कि बहुत आसान है, ऐसे आलम में वो ये समझे कि शेख अब्दुल कादिर जीनानी, वो तो उन्होंने उन्होंने मेरी सिफारिश कर दी, मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा गरीब नवाज, अजमेर और फलां, और मेरी वो, मुझे अल्लाह की पकड़ से बचा लेंगे। कौन बचा सकता है, हर एक को अपनी जान के लाले पड़े होंगे, खुद सोचिए। अल्लाह अकबर। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मकामे महमूद पर फाइज किया जाएगा, तो खुद से नहीं सिफारिश कर सकेंगे, अल्लाह ताला इजन देगा, आप सिफात करें, अब सर उठाएं, आप सिफात करें, तब करेंगे। और फिर ये हद भी लगा दी जाएगी इतनी, इतने लोगों की। अब तो पता नहीं कब से वो लोग जो आखिर में तो निकलेंगे, वो तो कितना अरसा, क्योंकि आप ने फरमाया मुझे नहीं पता मैं कब तक सजदे में पड़ा रहूंगा, मैं पड़ा रहूंगा जब तक अल्लाह चाहेगा, यही तो हदीस कह रही है। कितने साल गुजर जाए, वो 100 साल है, 200 साल है, 300 साल है, पता नहीं है। फिर जब अल्लाह चाहेगा, अल्लाह फरमाएगा कि अब आप अपना सर उठाएं, ये हदीस में है, ये जो मैंने अभी आपको सुनाई है। और इनके लिए आराम से है कि हम जहन्नुम में उस वक्त पड़े रहेंगे, जब आप सरम की शिफात हो जाएगी तब हम निकल आएंगे, कोई बात नहीं, जैसे जहन्नुम ना हो गई, कोई बाग है जिसके अंदर बैठे हैं इंतजार का। यहाँ पर तो एयरपोर्ट पे बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर ऑफिस जाए वहां पे इंतजार मुश्किल हो जाता है कि हाय इतने घंटे हो गए, हाय हमें बैठना पड़ रहा है। और जहन्नुम के अंदर आराम से होंगे कि इंतजार करते रहेंगे शिफात हो जाएगी। तो इस चीज के ऊपर भरोसा करके कि हमारी तो शिफात हो जानी है और गुनाह पे गुनाह इंसान किए जाए, ये बड़ी ही बेवकूफी है। अल्लाह अकबर। और ऐसा नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया जाए कि आप लामहदूद तादाद में जहन्नुम से एक ही दफा निकाल के ले आए ना, बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, 3 दफा गए या 4 दफा गए रावी कहते हैं, तो एक दफा में नहीं कि सारे ईमान वाले निकल के आ गए। अल्लाह अकबर। तो आपको पता है शिफात के हसूल के लिए अब इतना ज्यादा हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ नेम कर देती हूँ कि कौन सी चीजें हैं जो इंसान को इसमें हेल्प कर सकती हैं कि उसको उस दिन शिफात मिल जाए अल्लाह के नबी की, कि कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करना, कुरान सिफारशी बन जाएगा, कुरान की सिफारिश मिल जाएगी, सूरह बकरा और आले इमरान की तिलावत करना, ये दोनों भी सिफारिशी बन जाएंगी। तो आप के अलावा भी इसका मतलब है कि और चीजें भी हैं जो सिफारिश करेंगी। तो अलबकरा और अली इमरान की जो तिलावत बहुत ज्यादा करता है, इसीलिए आपको कहा गया अभी इनको याद कर लें तो कितनी अच्छी बात है, तभी आप उनको ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे ना, तो ये सिफारशी बन जाएंगी। फिर सूरह मुल्क, क्योंकि जो रोजाना तिलावत करेगा वो भी उनके लिए सिफारिश के लिए खड़ी हो जाएगी। फिर तहज्जुद है, तहज्जुद की नमाज जो है ये भी इंसान के लिए उस दिन काम आएगी, इस चीज के लिए कि उसकी सिफारशी बनेगी। फिर सुबह शाम जो 10-10 दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात करेंगे। फिर अजान के बाद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करता है, आपको पता है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ी दावत तामा वली दुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात करेंगे। फिर जो 3 दफा जन्नत का सवाल करता है, तो जन्नत उसके लिए सिफारिश करेगी। 3 दफा जो सुबह को और शाम को जहन्नुम से पनाह मांगता है, तो जहन्नुम सिफारिश करेगी कि अल्लाह इसको मेरे अंदर ना डाल, मुझे इसको अपनी पनाह में ले ले। फिर जो मदीना में कयाम के दौरान मसाइब पे सफर करता है, मदीना में अगर आपके ऊपर कोई भी मुश्किल आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, वहां पे आप सबर करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए सिफारिश करेंगे। तो ये 9 अमाल ऐसे हैं जो कि हमें पता चलते हैं कि ये इंसान के लिए यानी शिफात का बायस बनते हैं। अब हर इंसान अपने अपने मुताबिक अपने लिए शिफात के लिए कोई ना कोई तैयार कर सकता है, मगर याद रखिए अनलिमिटेड और ऐसी शिफात की किसी का भी दिल कर रहा है और वो उठ के सिफारिशें कर करके लोगों को लेकर जाता है, जैसे दुनिया में सिफारिश करके जॉब दिला देते हैं, सिफारिश करके थाने से निकलवा लेते हैं, पुलिस से निकलवा लेते हैं, ऐसा नहीं होना। वह अलियुल कबीर, और वो बुलंद है और बड़ा है। अच्छा, एक तो मैंने आपको इसकी ये तफसीर बता दी, दूसरी भी एक तफसीर इसकी कही जाती है कि अल्लाह ताला की अजमत का ये मकाम बयान हो रहा है कि जब अल्लाह ताला अपनी वही करता है ना, वही इसके जरिए कलाम करता है, तो आसमानों के जो फरिश्ते होते हैं, तो यहाँ पे फिर ये लोग नहीं मुराद, मतलब है फिर यहाँ पे हत्ता इजाफुजिया, यानी यहाँ पे फरिश्तों की बात हो रही है कि जब उनसे घबराहट दूर हो जाती है, तो पता है जब अल्लाह ताला वही करता है तो आसमानों के जो मुकर्रर फरिश्ते होते हैं सुनते ही हैबत से कांप उठते हैं, वो गशी वाले की तरह हो जाते हैं, जैसे किसी किसी को गशी पड़ जाती है ना, गशी का दौरा, उस तरह उनकी हालत हो जाती है, इतनी घबराहट होती है उनके ऊपर अल्लाह ताला की हैबत, और उससे इतने खौफजदा होते हैं, इतने कांप उठते हैं, तो आपस में एक दूसरे से पूछते हैं कि इस वक्त रब का क्या हुक्म नाजिल हुआ। तो बस अहले अर्श जो है अपने पास वालों को, और वो फिर अपने पास वालों को, और वो फिर अपने पास वालों को इस तरह हुक्म पहुंचाते हैं कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया, ठीक ठीक पहुंचा देते हैं। तो एक आयत का ये मतलब लिया गया कि फरिश्ते मुराद हैं, और दूसरा है जो मैंने आपको बताया कि कयामत के दिन जब इंसान होगा वो उसके होश हवास गुम हो जाएंगे, और फिर जब जरा घबराहट दूर होगी तो फिर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने क्या फैसला फरमाया। और जो मैंने आपको फरिश्तों वाली बात बताई है ना, ये तो तफसीर से भी पता चलती है, जो हदीस की है ना, हदीस से भी पता चलती है। इस आयत की तफसीर के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि जब अल्लाह ताला किसी भी चीज का फैसला आसमान में करता है तो फरिश्ते आजजी के साथ, इतनी आजजी है उनके अंदर, अपने पर झुका लेते, और रब का कलाम ऐसे उनके ऊपर वाकई होता है जैसे जंजीर की आवाज है जो पत्थर पे जैसे टन करके बजती है ना, जंजीर को आप मारें पत्थर के ऊपर कैसी आवाज आएगी, इस तरह ऐसा उनके ऊपर होता है। जब हैबत उनके ऊपर से कम होती है, घबराहट दूर होती है, तब वो पूछते हैं तुम्हारे रब ने क्या फरमाया, जैसे यहाँ पे कहा गया, जवाब मिलता है जो फरमाया हक फरमाया, और वो अलियुल कबीर, अल्लाह ताला की बात उनके लिए, देखे हमारे सामने तो अल्लाह का हुक्म आ जाए, अब हम पढ़ रहे हैं कोई असर नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन उनके ऊपर कितनी हैबत तारी हो जाती है, कितना वो इस चीज को यानी अपने ऊपर लेते हैं, खौफ के मारे वो कपकपा उठते हैं। इब्ने अबी हातिम में भी है कि अल्लाह ताला जब किसी अमर की वही करता है तो आसमान वाले मारे खौफ के कपकपा उठते हैं, फरिश्ते हैबत ज़दा होकर सजदे में गिर पड़ते हैं, और सबसे पहले जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपना सर उठाते हैं और अल्लाह का फरमान सुनते हैं, फिर उनकी जुबानी और फरिश्ते सुनते हैं, और फिर वो साथ साथ कहते जाते हैं, फिर वो पूछते हैं ना अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, कालू मा ज़ा क़ाला रब्बुकुम, वो कहते हैं क्या फरमाया तेरे रब ने, क्या फरमाया तेरे रब ने, और फिर वो कहते हैं हक हक जो भी है सच है, और वो बड़ा बुलंदी वाला और बड़ाई वाला, ठीक है। तो ये फरिश्तों की हालत है। और अल्लाह ताला बड़ा ही अपने कबीर है, यानी अपनी शान में, अपनी जात में, अपने फैसलों में, अपनी कुदरतों में, सब में अल्लाह ताला अल कबीर और अल अली बुलंद है। इसी से भी पता चलता है कि अल्लाह ताला हर जगह, ये कहना कि अल्लाह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, ये नहीं, अल्लाह अल अली ये बुलंद है।